भाग्य को लेकर इस दुनिया में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक यह कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारा भाग्य पहले से ही निश्चित होता है अथवा निर्मित हो चुका होता है, तथा दूसरा यह कि हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। दोनों ही बातें बिल्कुल सत्य हैं, बस हमें इन बातों को सही दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। जैसे कि एक कैसेट में 3 घंटे की फिल्म की रील पहले से ही भरी हुई होती है, लेकिन अगर हमें इस फिल्म को देखना हो तो प्ले का बटन ऑन किए बिना हम उस फिल्म का अवलोकन कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जब तक हम मनुष्य आत्माएं अपने जीवन में प्ले बटन अर्थात कर्म का स्विच ऑन नहीं करेंगे, तब तक हमारा भाग्य सोया ही रहेगा। भाग्य को सवारने का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसा कर्म हम करते हैं ठीक वैसा ही भाग्य रूपी फल हमें प्राप्त होता जाता है। आत्मा रूपी कैसेट में जैसे संस्कार भरे हुए होते हैं, आत्मा से वैसे ही कर्म होंगे। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारा भाग्य बनता है हमारे संस्कारों से, और संस्कार बनते हैं हमारे द्वारा किए गए कर्मों से। जिस प्रकार संस्कारों को बनाना या मिटाना मनुष्य के हाथ में ही होता है, ठीक वैसे ही भाग्य को सवारना या बिगाड़ना भी स्वयं मनुष्य के ही हाथ में होता है। श्रेष्ठ भाग्य की रचना श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे भाग्य को बनाने की कलम न तो भगवान के हाथ में है, न किसी मनुष्य के और न ही किसी परिस्थिति के। हम स्वयं ही कर्म और संस्कार की कलम से अपना भाग्य बनाते हैं। अगर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारे द्वारा किए गए कर्म अर्थात एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। वो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर कर्मों के फल निश्चित होते हैं। कर्म करने वाली आत्मा है या शरीर? तो आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के हल ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी द्वारा इस प्रवचन श्रृंखला में, जिसका शीर्षक है कर्मों की गति।
इसलिए वास्तव में मनुष्य मनुष्य योनि में रह करके ही अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगता है। वो हिसाब किताब के लिए जैसे कहा जाता है, जैसा बीज वैसा फल। आम का बीज मैं डालूं जमीन में, फिर मुझे चीकू खाने को मिलेगा? नहीं मिल सकता है। जबकि दोनों की खेती साथ साथ होती है, वही धरनी है, वही पानी है, वही खाद है, वही सब कुछ है, फिर भी एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं निकलता है? क्या कहेंगे, क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि हर बीज की विशेषता अपनी अपनी है। ठीक इसी प्रकार आत्मा भी एक बीज है, और एक बार परमात्मा ने उसको मनुष्य योनि में रोप दिया, फिर उसमें से वो जानवर कैसे बनेगा? भले वही मिट्टी से दोनों का शरीर बना, वही 5 तत्व है इस शरीर में, वही 5 तत्व उस शरीर में भी है, लेकिन फिर भी आत्मा रूपी बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है। और इसलिए जब विशेषता ही अपनी अपनी है तो एक बीज से दूसरा फल नहीं मिलता है। मनुष्य आत्मा की विशेषता क्या है जो जानवर आत्मा में नहीं है, और जानवर आत्मा की विशेषता क्या है जो मनुष्य आत्मा में नहीं है? मनुष्य आत्मा के बीज की विशेषता है कि वो 10 साल तक का सोच सकता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे वो भी सोच लेता है, भविष्य प्लानिंग कर सकता है और इकट्ठा कर सकता है। जानवर शाम को क्या खाएगा उसके लिए भी इतनी सोचने की या प्लानिंग करने की ताकत उसकी बुद्धि में नहीं है। लेकिन जानवर आत्मा की जो विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है। आज कोई भी नेचुरल कैलामिटी होने वाली होती है तो सबसे पहला पता किसको चलता है? जानवरों। उनकी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल है कि उसको पहले पता चल जाता है और इसीलिए वो भागने लगते हैं या हलचल मचाने लगते हैं। इसी प्रकार कहा जाता है कि सुनामी के समय मनुष्य को पता नहीं चला लेकिन जानवरों को पहले पता चल गया। कहने का भावार्थ ये है कि जो जानवरों की विशेषता है वो मनुष्य योनि की नहीं है और जो मनुष्य की विशेषता है वो जानवरों की नहीं। इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं मिल सकता है और इस बात के ऊपर रिसर्च भी हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो कई बार कई लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या जानवर आत्माओं को कभी इच्छा नहीं होती होंगी कि हम मानव बने? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। हर एक वास्तव में अपनी अपनी योनि में बहुत खुश है। जानवर अपनी योनि में खुश है, मनुष्य अपनी योनि में खुश है। आज कोई मनुष्य बहुत रोगी हो, बहुत दुखी हो, बहुत टेंशन हो उसको और उसको भगवान आकर के पूछे, ये जन्म में, मनुष्य जन्म में इतना दुख तुमने महसूस किया, अगला जन्म मैं तुझे कोई जानवर का बना दूं? तो मनुष्य क्या कहेगा? नहीं। क्यों नहीं कहता है? उसको अपनी योनि प्रिय है, भले दुख भोग रहा है तो भी उसको अपनी योनि ज्यादा प्रिय है। ठीक इसी प्रकार जानवरों को अपनी योनि अति प्रिय है। आज अनाज के अंदर कोई कीड़ा होता है, आप धूप में रखो वो अनाज को साफ करके या साफ करने के लिए, तो वो कीड़े को भी आप देखेंगे वो अपनी जान बचाने के लिए इतना जल्दी भागता है, ढूंढता है कोई स्थान कि जहां जाकर के मैं छिप जाऊं, जहां चला जाऊं ताकि मैं सुरक्षित रहूं। तो उसको अपनी योनि प्रिय है ना, क्यों भागे नहीं? तो उसको भी इच्छा हो ना मैं मानव बनूं, ये शरीर जल्दी जल्दी छोड़ूं और मानव बन जाऊं? नहीं, उसको अपनी योनि अति प्रिय है, मनुष्य को अपनी योनि अति प्रिय। इसीलिए भगवान ने किसी को भी ये संकल्प उत्पन्न होने की मार्जिन ही नहीं दी है कि किसी को भी इच्छा हो कि हम दूसरी योनि में जाएं। जैसे मनुष्य को इच्छा नहीं होती है, ऐसे जानवरों को भी इच्छा नहीं होती है। साथ ही साथ जो कुछ अनुसंधान हुए हैं, वैज्ञानिक सबूत, वैज्ञानिक रिसर्च जो चल रहे हैं, ये भी यही बात को स्पष्ट करता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर्स की टीम है, खास करके उसमें डॉक्टर रेमंड मूडी है, नाम शायद आपने सुना हो, डॉक्टर रेमंड मूडी है। और डॉक्टर रेमंड मूडी के साथ एक टीम है जो ये रिसर्च कर रहे हैं पूर्व जन्म के ऊपर। और उन्होंने रिसर्च के अनुसार वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म में ले जाते हैं, दो जन्म पहले भी ले जाते हैं, चार पांच जन्म पहले भी ले जाते हैं और उनको कुछ सवाल पूछते हैं, तुम्हारी मृत्यु कैसी हुई थी, तुम कहाँ थे, तुम्हारा नाम क्या था, आदि आदि सवाल पूछते हैं। उन्होंने बताया कि आज दिन तक उन्होंने करीबन 3,65,000 केस पर रिसर्च किया है, उसमें से 1,62,000 की भाषा को वो समझ पाए, क्योंकि उनके टीम के अंदर इतने डॉक्टर्स को नहीं है जो दुनिया की सारी भाषाएं समझ सके। दुनिया में तो कितनी भाषाएं हैं। तो इसलिए जब मनुष्य को पूर्व जन्म में ले जाते हैं, वो स्मृति जागृत करते हैं उनकी हिप्नोटिज्म के माध्यम से, तो वो बातें वो कहने लगता है उसी भाषा के अंदर। तो जो 162,000 की भाषा वो समझ सके, तो किसी ने भी ये नहीं बताया कि हम जानवर से मानव बने हैं। और जिनकी भाषा नहीं समझ पाए उन्होंने भी कोई मनुष्य बोली ही बोली थी, कोई जानवर की बोली नहीं बोली थी, ये स्पष्ट था। ये उनका रिसर्च का रिपोर्ट कहता है। उतना ही नहीं, लेकिन इनके आधार पर कई बीमारियां वो ठीक कर रहे हैं जो पूर्व जन्म के घटनाओं से संबंधित है। जब उनका पूर्व जन्म में ले जाते हैं, वो सवाल पूछते हैं, आप पहले कहाँ थे, क्या था, कैसे था, ये सब कुछ पूछते हैं। वो जो भी बातें बताते हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी देते हैं, फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पूछताछ करते हैं उस परिवार के, ऐसा नाम का कोई व्यक्ति था और उसने कैसे शरीर छोड़ा था, उसकी सारी नेचर के बारे में पूछताछ करते और दोनों इन्फॉर्मेशन को टैली करते हैं। ये उनका रिसर्च है। उनकी एक किताब छपी है बाहर में दुनिया के अंदर, लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसके अंदर ऐसे कई किस्से उन्होंने व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार मनुष्य मनुष्य ही बनता है और फिर उसके आधार पर जो बीमारियां ठीक करते। ऐसे ही एक भाई था, उसको इतना सिर दर्द था, इतना सिर दर्द था, जब काफी दवाइयां आदि करा करके भी सिर दर्द उसका ठीक नहीं हुआ, ये हिप्नोटिस्ट के पास गया, उसको हिप्नोटाइज किया, पता चला कि पूर्व जन्म में वो एक सलून बॉय था, हेयर ड्रेसर था, तो सलून में काम करता था। अब उस सलून के अंदर नेचुरल है कि हेयर सेटिंग करना हो या जिस प्रकार, तो इतने परफ्यूम्स की सुगंध में वो रहता था और इस जन्म में उसको परफ्यूम्स की सुगंध नहीं मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति को चाय की आदत हो और चाय न मिले तो कैसे सिर दर्द होता है। अब उसको वो खुशबू मिलती नहीं है जो आदती थी उसके ब्रेन टिश्यूज आदि सब स्मृतियां में वो चीज भरी हुई नहीं मिल रही, तो उसको सिर दर्द था। उसी वक्त उसको परफ्यूम सुंघाया गया तो उसका सिर दर्द ठीक हो गया, जो इतनी दवाइयां लेने पर नहीं ठीक हो रहा था। साइकोलॉजिकली जो पूर्व जन्म से बीमारियां कैरिड फॉरवर्ड है, तो इस जन्म में वो बात कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज का एहसास अनुभव वो इस जन्म में कर पाता है क्योंकि आत्मा में स्मृति है। तो इस तरह से कई बीमारियां ठीक हो रही है और इससे भी साइंस ने भी ये बात को सिद्ध कर दिया है कि देयर इज अ रीबर्थ, और वो रीबर्थ भी मनुष्य मनुष्य योनि में ही लेता है। फिर हम कैसे ये जन्म लेते हैं जबकि हमने देखा 5,000 साल का चक्र है कल, तो 5,000 साल में हमारे कितने जन्म होंगे? 84 लाख कहे तो हिसाब बैठता ही नहीं। 5,000 साल में 84 लाख, एक एक मिनट का भी जन्म हो तो भी 84 लाख फेरे में तो नहीं घूम सकते। तो फिर कितने जन्म है? तो शास्त्र के अनुसार ही ये बताया गया है 84,000। 84,000 जब कहते हैं तो लक्ष्य के दो अर्थ होते हैं, लक्ष्य अर्थात लाख, लाख को भी लक्ष्य कहते हैं, और लक्ष्य अर्थात जन्म। अब सिर्फ 84 जन्म कहे शास्त्रवादी तो हिसाब देना पड़े कि 84 जन्म हमने कैसे लिए, कितनी आयुष्य कितने जन्म में होती है, जो हिसाब किसी के पास नहीं है क्योंकि ये हिसाब खाली परमात्मा के पास ही है। इसीलिए मनुष्य ने कह दिया 84 लाख योनियों में जाना पड़ता और जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है, और इसलिए उन्होंने ये एक एक युग की आयु भी लाखों साल कर दी तभी तो हिसाब बैठेगा ना। लेकिन उसके आगे उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जबकि परमात्मा जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, वो आकर के कुछ रहस्य स्पष्ट करता है। इसलिए ये डिवाइन रेवेल्यूशन है, जो परमात्मा द्वारा स्पष्ट किया गया रहस्य है कि ये एक काल चक्र 5000 साल का है और 5000 साल के अंदर इंसान के खाली 84 जन्म मैक्सिमम और मिनिमम एक जन्म।
राजयोग अर्थात ऐसा योग व जोर जो हम पहले स्वयं के साथ और फिर ईश्वर के साथ स्थापित करते हैं, जिससे हम स्वराज अधिकारी अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाते हैं।